आपको धन्यवाद भाई देमास, भाई कार्ल शेकेरियन या देमास शेकेरियन और भाई कार्ल विलियम और सारे प्रतिनिधि। मैं उस भाई को धन्यवाद देता हूँ यहाँ हलवाहा अभी प्रकट किया जो मैंने चाहा आज रात ही की उसने मेरी बात सीधे सीधे मुझसे ले ली क्योंकि मैंने इसमें आनंद किया। मैं विश्वास करता हूं कि ये बेदारी किसी भी बेदारी से बढ़कर है जिसमें मैं कभी हुआ। मैंने कभी भी किसी बेदारी में इतनी सहस्वरता नहीं देखी और ऐसी वास्तविक संगति और भाईचारे का प्रेम। दूसरी चीज जो मैंने की है, मैं बहुत सारे नए स्वर्गीय प्रतिनिधियों से मिला हूं, नए भाई। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने उनसे हाथ मिलाया और बातें की। अभी कुछ रात्रियों पहले मैं बैप्टिस्ट भाई को सुन रहा था जो वहाँ बैठा है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, इरविन, और वो मेरे पास एक कार्ड लाया। मैं विश्वास करता हूँ कि ये उसकी मौसी का है जो आज रात्रि यहाँ पर बैठी हैं। उसने ये कार्ड लगभग 20 वर्षों से रख रखा है। वो बीमारी से मर रही थी जब उन्हें सभा में लाया गया। वो हो सकता है कि डॉक्टर इसकी व्याख्या कर सके कि ये क्या है। ये कुछ कोड़ के समान था, परंतु कोड़ नहीं था। आप केवल एक शल्य चिकित्सा थी। वे वहाँ से एक प्रकार की रस्सी काट सकते थे या ऐसे ही कुछ, परंतु वो पेड़ के समान हो जाती है। उसे वहीं पर बैठे रहना पड़ता है। जबकि वो वहाँ बैठी हुई थी, संभवतः उनके प्रार्थना पत्र को नहीं बुलाया गया या कुछ नहीं, प्रार्थना पंक्ति में ना आ पाई। पवित्र आत्मा ने मुझे उनकी ओर निर्देशित किया और वो आज रात्रि यहाँ वापस आई हैं, चंगी हैं, और हम इसके लिए बहुत ही धन्यवादित हैं। मेरी बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर के पुत्र में आपके साहसी विश्वास के लिए। होने पाए कि वो आपको जब तक घर नहीं बुलाता स्वस्थ रखे, जब ये मरणहार अमरण को पहन लेगा। मैं इसके लिए बहुत ही धन्यवादित हूँ ये सोचकर कि उन्होंने ये प्रार्थना पत्र इन वर्षों में रख रखा और यहाँ मेरे पास लाई हैं और आज रात्रि मुझे दिखाया। आप जानते हैं, मैं कह रहा था ये उसके समान है जैसे पानी पर रोटी। जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो ये आपके पास वापस आ जाता है। अब मुझे इन बहुत सारे सेवकों से मिलने का भी विशेषाधिकार मिला और निश्चय ही मैं उनकी अच्छी संगति के लिए सराहना करता हूँ इस सहयोग के लिए। भाई कार्ल ने मेरे लिए अगले वर्ष वापस आने के लिए मुझसे घोषणा की है। यदि प्रभु ने चाहा और हम यहाँ पृथ्वी पर हुए, और भाई मैं अगले वर्ष फिर से सबसे मिलने की आशा करता हूँ और प्रत्येक अपने साथ एक प्रतिनिधि लेकर आए और पत्नी के साथ। अब बस मैं एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ इस विषय में, थोड़ा सा कुछ हो सकता है क्षण भर के लिए, क्योंकि डॉक्टर रीड को आगे बोलना है और मैं आज रात ही यहाँ पहुँचा हूँ। मैं 250 मील चला हूँ ताकि मैं डॉक्टर रीड को सुनने के लिए ये यात्रा की है। और अभी कुछ क्षण पहले कुछ घटित हुआ कि मैं परंतु डॉक्टर रीड को उन्हें सुनने के लिए मैं 1000 मील भी गाड़ी चलाता, परंतु कुछ जब से मैं यहाँ पर हूँ मैं 1000 मील भी गाड़ी चलाता केवल ये सुनने के लिए जो मैंने थोड़ी देर पहले सुना था। बहुत ही आश्चर्यजनक बात, कुछ ऐसा जो मांस और लहू प्रकट नहीं कर सकता था। इसे करने के लिए पवित्र आत्मा लेना होता है और किसी को देखकर जो मेरे जीवन में इस प्रकार से साहस बंधाता है, और निश्चय ही मैं अपने बाकी जीवन में बहुत ही आभारी रहूंगा। जो मैं कहना चाहता था, यदि मुझे कभी डॉक्टर से शल्य चिकित्सा करानी पड़े तो डॉक्टर रीड आप मेरे पास जल्दी आ जाना। मैं ऐसे मनुष्य पर शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन के लिए विश्वास कर सकता हूँ। यदि मुझे कभी कराना पड़ा, वे हाथ जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे ही होंगे जिन्हें मैं चाहता हूँ कि मुझ पर कार्य करें। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे ये कभी नहीं कराना पड़ेगा, परंतु यदि मेरा होता है तो मैं चाहूँगा कि वो या उसके समान व्यक्ति कार्य करे यदि वो वहाँ पर नहीं हो सकते हैं। मेरे पास पिछली रात घटित होने के लिए कुछ था कि वो या बीते कल दोपहर पश्चात, बल्कि ये मेरे लिए वास्तव में एक अजीब प्रकार की चीज थी और मैं संक्षिप्त करूंगा क्योंकि मैं अपने भाई का समय नहीं लेना चाहता जैसे कि अब वो बोलने वाला है, परंतु मैं समझता हूँ कि ये एक प्रकार से मेरी सेवकाई के लिए संपूरक है। मैंने छोटी छोटी बातें देखी हैं, मेरे लिए छोटी छोटी बातों का अर्थ होता है। मैं ऐसा विश्वास नहीं करता कि एक मसीह के लिए कोई भी चीज अकस्मात घटित हो जाती है। मैं सोचता हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से ठहराई हुई होती है, क्योंकि यीशु ने कहा वो सारी बातों को मिलाकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करेगा जो उससे प्रेम करते हैं। इस प्रकार से इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि हर एक छोटी बात इस छोटी नम्र सेवकाई में जो उसने मुझे दी है कि मैं आप लोगों की सहायता करूं, प्रत्येक की सहायता करूं, कि आप सब मेरी सहायता करें, एक दूसरे की सहायता करते हैं कि महिमा को पहुंचें। इन सब छोटी छोटी बातों में मेरे लिए कुछ अर्थ होता है, परंतु मेरे लिए बीते कल विश्वास करना कठिन था जब मैंने अपना मूल पाठ यहाँ पर से खो दिया। मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी इतना दुविधा में नहीं पड़ा। और तब मेरी पत्नी ने मुझे बड़े दिन पर एक नई बाइबल दी थी। मेरी पुरानी वाली फट गई थी। अब उसे मेरे पास लगभग 20 वर्ष हो गए हैं, जो कि मुझे हॉस्टन गॉस्पल टबरनिकल के लोगों के द्वारा दी गई थी बहुत वर्षों पहले, जब मैंने अभियान आरंभ किए थे। और इसलिए मैं इसे इतने संजो कर रखता हूँ। और मैं सागर पार करने वाले पर्चे और पन्ने और उसके आसपास, जब तक कि मैं ये बाहर निकल कर गिरने नहीं लगे। और हो सकता था कि मैं उत्पत्ति में एक प्रश्न लेता और उसे पीछे व्यवस्था विवरण में ढूंढता। आप जानते हैं कि मैंने इसे पीछे बाइबल में कहां पाया था। इसलिए बड़े दिन पर वो मेरे लिए एक लाई, और मैं पुरानी पुस्तक को एक और रखना पसंद नहीं करता। ये मुझे बहुत ही प्रिय थी। और मैंने कहा, यदि यीशु के आने से पहले मैं चला जाता हूँ तो इसे मेरे ऊपर रख देना और इसे मेरे साथ गाड़ देना। जब हम आएंगे तो मैं इसके साथ आऊंगा, ताकि फिर, ये मेरा विचार है जो भी है। जैसे कि मैं एक छोटी कहानी सुनाया करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये अपवित्रकारी या धर्म विरोधी नहीं है। परंतु मैं वहाँ गया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैं विश्वास करता हूँ कि वो भाई अल ब्रिकेट थे। न्यूयॉर्क में एक सभा थी और मैं एक व्यक्ति से मिला। उसने कहा, एक प्रचारक होने के नाते तुम इन व्यापारियों के साथ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ। और उसने कहा, आपका किस प्रकार का व्यापार है? मैंने कहा, भरोसा दिलाने का, यानी कि अश्योरेंस। उसने सोचा कि मैंने इंश्योरेंस बीमा कहा है, आप समझे, इसलिए मैंने कहा विश्वास दिलाने वाले। उसने कहा, ओ आप किस प्रकार का बीमा बेचते हैं? मैंने कहा, अनंत जीवन, अनंत। कहा, मैं इसे नहीं बेचता, मेरे पास भी एक बीमा पॉलिसी है, मेरे स्वयं के पास, और मैं दूसरों को इसको लिख कर देता हूँ। मुझे एक लड़का स्मरण है, एक समय मैं उसके साथ विद्यालय गया था और बीमा बेचने वाला था। अब बीमा ठीक है, परंतु मेरा कोई नहीं है। तब इसलिए वो मेरे घर पर आया और उसने कहा, बिली, मैं तुम्हें कुछ बीमा पॉलिसी बेचना चाहता हूँ। कहा, मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ, मेरा भाई महानगर में बेचता है। उसने कहा, अच्छा। बोला, मैं आपको कुछ बीमा पॉलिसी बेचना चाहता हूँ। मैंने कहा, ओ विल्मर, आपको धन्यवाद। और आप आज रात्रि, वो यहाँ हो सकता है, उसका भाई ध्यान कुटीर अपर रूम के लिए लेख लिखता है, वो अपर रूम पुस्तक, इसलिए वो। मैंने कहा, मेरे पास एक भरोसा है, यानी एश्योरेंस। उसने कहा, क्या? और मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखा जैसे कि मैं कोई ढोंगी हूँ। उसने और मैंने कहा, इसलिए उसने कहा, बिली? और मैंने कहा, हाँ, ओ मेरे पास एश्योरेंस यानी भरोसा है। और उसने कहा, ओ मुझे खेद है। बोला, मुझे नहीं मालूम था, मैंने सुना था कि तुम्हारे पास कोई इंश्योरेंस यानी बीमा नहीं है। और मैंने कहा, नहीं, मेरे पास एश्योरेंस यानी भरोसा है। और उसने मुझे पकड़ लिया। मैंने तब जो कहा, वो बोला, आपने क्या कहा? मैंने कहा, भरोसा यानी एश्योरेंस। और उसने कहा, आपका क्या अर्थ है? मैंने कहा, धन्य भरोसा, यीशु मेरा है, वो आने वाली दिव्य महिमा का क्या ही स्वाद है। मैं उद्धार का वारिस हूँ, परमेश्वर द्वारा खरीदा गया, उसके आत्मा से जन्मा, उसके लहू से धोया गया। उसने कहा, बिली, आप जानते हो कि मैं इसकी सराहना करता हूँ। कहा, ये बहुत अच्छी बात है, परंतु कहा, पुत्र, ये तुम्हें कब्रिस्तान में नहीं पहुँचाएगा। मैंने कहा, परंतु मुझे ये वहाँ से निकालेगा। मैं डरता नहीं, मैं वहाँ पहुँचने के लिए परेशान नहीं हूँ, ये बाहर निकलने के लिए। देखिए, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम इस विषय में ऐसा अनुभव करते हैं। पिछली सांझ मैंने जब वो नई बाइबल उठाई और मैंने उस मूल पाठ को नहीं ढूंढ सका, और मैंने वो नई बाइबल उठाई और मैं पुराने वाले से पढ़ रहा था, और मैंने नया वाला लिया और अपनी बगल में लगाकर यहाँ आ गया, और मैंने उस वाले स्थान को निकाला और मैंने सोचा, अच्छा, मैं विश्वास करता हूँ कि ये यहाँ यूहन्ना 16:21 में था, और पढ़ने में वो बिल्कुल वो नहीं था। मैंने भाई मूर से कहा, क्या ये यहीं पर है? जी हाँ। और मैंने पलट कर देखा और ये वहाँ नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि उन्होंने पन्ना लगाने में चूक कर दी, पन्नों में। तब मेरा भाई यहाँ आया, भाई स्टैनले, वो यहाँ आया, बल्कि बिशप स्टैनले। मैं नहीं जानता था कि उस व्यक्ति का क्या अर्थ था, यद्यपि ये इतना तसल्ली देने वाला था। वो मेरी ओर चलकर मेरी बगल में आया और उसने कहा, भाई धैर्य रखें, संभव है परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, समझे। और इससे मेरा साहस बंधा, ये सोच कर कि वो कहेगा कि मुझे आश्चर्य है यदि वो अनुभव करे कि उसने भविष्यवाणी कर दी। परंतु उससे कुछ क्षण पहले बात कर रहा था, यहाँ आने से थोड़ा सा पहले, मुझे निश्चय है कि उसने की थी। इसलिए मैं इसे अपने संदेश जच्चा की पीड़ाओं में लाया था और आदि आदि, और मेरे करने का सीधा सीधा तरीका लिली के विषय में, और ये कैसे जन्म लेती है और उत्पन्न होती है और ऊपर आती है और सूर्य तक पहुंचती है, उसकी बूंद और आदि आदि, और जब तक उसका सड़ना, जो कि उसका मर जाना है, बल्कि उसका जन्म लेना, कि बाहर निकलकर आए। और मैं कलीसिया का चित्रण करने का यत्न कर रहा था, जैसे कि यहाँ डॉक्टर, यदि वो रोगी का इलाज करता है, हमारे पास आज डॉक्टर हैं जो कहते हैं आप अपने पैर की एड़ी को पीछे की ओर रगड़ें और अपने मुख पर के कैंसर को चंगा कर लें, आप समझे। परंतु एक अच्छा डॉक्टर इस प्रकार की बातों को नहीं सुनेगा, वो रोगी का इलाज उस पुस्तक के अनुसार करेगा जो वो चिकित्सा की खोज पर पढ़ रहा है। और इसी प्रकार से मैं रोगी के इलाज करने का यत्न करता हूँ। जब मैं कलीसिया को बीमार देखता हूँ, मैं उन्हें ये बताने का यत्न नहीं करता कि उन्हें फिर से हाथ मिलाने की आवश्यकता है या कुछ और, एक नई संस्था। मुझे उनका इलाज पुस्तक के अनुसार करना है जो मैं जानता हूँ, देखा। और इस प्रकार मैं देखता हूँ कि कलीसिया लगता है छोटी खसरा से टूट जाएगी। मैं उसी नुस्खे को लेना चाहता हूँ जो मैं सोचता हूँ कि ये ठीक है खसरे के लिए, कलीसिया से बाहर निकलकर। जब मैं देखता हूँ कि इसमें पाप पनप रहा है, ये उसी प्रकार से है। मैंने एसाव और याकूब की तुलना करने का यत्न किया और तब समयों को कम किया और मैं उसमें नहीं जाऊंगा, परंतु इसको मैं अपने वचन के अंतिम भाग में लेकर आऊंगा। परंतु मैं इसको प्रयोग करने के लिए अपने वचन के अंतिम भाग में लेकर आता हूँ, तुलना कर रहा था वचन से अलग नहीं, परंतु जैसा यीशु मसीह ने कहा कि ये होगा। मुख्य डॉक्टर ने क्या कहा है कि कलीसिया की स्थिति क्या होगी इन अंतिम दिनों में, ये लुदेखिया की होगी, धनी, अंधी, नंगी, निर्धन कलीसिया, और इसकी तुलना सदोम के दिनों से होगी। अब हम जानते हैं कि ये सत्य है। यदि आप इसे ऐतिहासिक रूप में देखें, पहले वो नूह के दिनों को लाया और तब सदोम के दिनों को, और इसी प्रकार से उसने यात्रा की उसी प्रकार से, और इतिहास ने स्वयं को बहुत बार दोहराया है, इतिहास करता है, और ऐसे ही बाइबल की प्रतिज्ञाएं। उदाहरण के लिए जैसे कि मत्ती 3, जहां ये कहा गया है अपने पुत्र को मैंने मिस्र से बुलाया। अब यदि आप इसके संदर्भ को इस पर चलाएं, ये याकूब था उसका पुत्र, उसने मिस्र से, वो उसका लगभग पुत्र था, परंतु उसका महान पुत्र यीशु को भी मिस्र से बुलाया गया, इसलिए ये इसका संयुक्त उत्तर था। इसलिए और जैसे कि देख रहे हैं वे इस विषय में 7 बातें करते हुए गए, और तब मैंने इस पर अपने विचार लिए और मैं इससे बाहर चला गया, प्रचार मंच से हटा और चला गया। मेरे बालक घर जा रहे थे, यही कहीं पर ठहरना चाहते थे कि सैंडविच लें, और मैं अंदर गया। पत्नी ने कहा, बिली मैं इतनी अधीर थी, मैं नहीं समझ सकी कि क्या करूं। कहा, मैंने आपको वो बाइबल दी थी। मैंने कहा, तुमने इसे कभी नहीं लिखा और तुमने इसे एक साथ नहीं जोड़ा प्रिय। उसने कहा, परंतु ये सोचकर मैंने आपको एक बाइबल दी और उसमें कमी थी। मैंने कहा, भाई हो सकता है ये नहीं था, और इसलिए एक बालक ने इसे उठाया और हम इसके प्रश्नों को अनुभव करते। नहीं, ये ठीक दिखाई पड़ी, परंतु ठीक नीचे की ओर ये दोनों पृष्ठ आपस में चिपके हुए थे, देखिए। और 16वां अध्याय इस ओर से था, और तब 16वां अध्याय लगातार चलकर दूसरी ओर आ गया, और 17वां अध्याय आरंभ हो गया। देखिए, ये बिल्कुल ठीक वहीं उस पार, और वो इंडिया कागज बहुत ही पतला आपस में चिपका हुआ था, और मैं 17वें अध्याय को पढ़ रहा था सारे समय बजाय 16वें अध्याय के। और मैंने सोचा, परमेश्वर आपने ये क्यों किया, अब वहाँ पर ऐसी बात क्यों हुई। मैं ये अनुभव कर रहा था, आप जानते हैं, ये देखते हुए कि ये सब क्या था, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कुछ भी अचानक नहीं घटता। और मैं यहाँ इस भाई की तसल्ली के विषय में सोच रहा था, आते हुए उसने मुझसे कहा, धैर्य रखो, वो एक पादरी होने के नाते, धैर्य रखो, हो सकता है परमेश्वर कुछ करने जा रहा हो या कुछ ही इसी प्रकार से। और मैंने सोचा, ये कैसे हो सकता है, और तब वहाँ बैठे हुए स्वर्ग के धमाके के समान ये मेरे पास आया। अब ये तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं निकलता, परंतु ये मेरे लिए निकलता है, देखा। मुझे स्मरण है लूका के 4 अध्याय में कि यीशु नासरत के आराधनालय में गया, जहाँ वो पाला पोसा गया था, जैसे कि उनकी रीति सबत के दिन कलीसिया आराधनालय में जाने की थी। और जब वो गया, हम वहाँ देखते हैं कि याजक ने उसे बाइबल यानी कुंडलित को दिया। यीशु उस कुंडलित को देख रहा था और एक विशेष स्थान यशायाह 61 को ढूंढा और उसने पवित्र लेख को पढ़ा। फिर उसने बाइबल वापस सेवक को दे दी, और जैसे कि वो सभा की ओर घूमा तो सारी आंखें उस पर लगी हुई थीं, और उसने कहा, आज के दिन ये पवित्र लेख पूरा हुआ। और हम जानते हैं कि इस पवित्र लेख को पढ़ना कितना असाधारण था, क्योंकि उसने केवल पहले और दूसरे पद का एक भाग पढ़ा, यशाया 61:1-2, परंतु उसने यहाँ तक पढ़ा जहाँ प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि टूटे हुए हृदयों को जोड़ूं और बीमार को चंगा कर दूं और अंधी आँखों को खोलूं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, और तब वो रुक गया। क्योंकि अगला न्याय का आना था, ये उसके दूसरे आगमन पर लागू होगा, पहले वाले आगमन पर नहीं। और वो रुका और घूमा और कहा, आज के दिन ये पवित्र लेख पूरा हुआ। ये कितना सीधा था, और ये कि क्या ही बयान था शिक्षकों के लिए और उन लोगों के लिए जो उपस्थित थे, कि वो इसे लोगों को स्पष्ट कर सका। आज के दिन ये लेख पूरा हुआ, क्योंकि यहाँ वो मसीहा था, तब भी उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया। वो यहाँ पर था उस घड़ी के लिए चुना हुआ अभिषिक्त। उसकी सेवकाई की हर एक छोटी घटना उसके जन्म से, उससे ये सिद्ध हुआ कि वो कौन था, और तब भी वे इसका विश्वास नहीं कर सके। क्या ही कथन है, परंतु आज वो ये कह सकता है, और यदि एक व्यक्ति उनकी आंखें खोल दे, वे जान सकते थे, जानते कि वे किस दिन में जी रहे हैं, क्योंकि वो उसका समय था, क्योंकि वो ठीक वहाँ ठीक उन्हीं कार्यों को कर रहा था जो पवित्र लेख सारे भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था कि ये उस दिन में घटित होगा। यहाँ वो ठीक उन्हीं कार्यों को कर रहा था जिनकी परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि ये घटित होंगे। वे कैसे इसे देखने में चूक गए, उन्हें एकदम मालूम हो जाना चाहिए था, देखते हुए कि उसकी सेवकाई क्या थी, वहाँ मसीहा है। वे इसे जान जाते क्योंकि उसने कहा, ये पवित्र लेख पूरा हुआ। मैं आज के विषय में सोचता हूँ और ध्यान दें, वो क्या था जो एक याजक के समान वचन दिया, वचन पढ़ा गया, वापस याजक को लौटा दिया गया। और मेरे मूल पाठ में से अंतिम संदर्भ जो मेरे पास था और मेरे लेख लिखे हुए थे, लूका 17:30, जहाँ यीशु इन दिनों का जिनमें वो हम रह रहे हैं उल्लेख कर रहा था, धनी लोदिकिया युग और तो भी राजनीति में सड़ाहट, कलीसिया की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति उतनी ही सड़ी हुई है जितनी हो सकती है। और तब उसने कहा, जैसे कि लूत के दिनों में था, ऐसा ही ये आने वाले अंत समय में होगा। ध्यान दें, उसने वहाँ क्या कहा, उस दिन में जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। देखिए, उन दिनों में जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए, वो तीन नामों में आया, वो एक मनुष्य के पुत्र के समान आया जो कि भविष्यवक्ता था, और उसने वही किया, उसने अपनी सेवकाई को सिद्ध किया एक भविष्यवक्ता होने के द्वारा। हम ये सब जानते हैं, हमें से हर एक ये जानता है। उसने कभी नहीं कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र है, उसने कहा वो मनुष्य का पुत्र था। अब आज वो परमेश्वर का पुत्र है जो कि वो वापस आया है, और अब वो पवित्र आत्मा के रूप में है, ना दिखाई देने वाला व्यक्ति, परंतु फिर भी परमेश्वर का पुत्र। सहस्र शताब्दी में वो अपने पिता के सिंहासन पर बैठता है, जबकि वो दाऊद का पुत्र होगा। उसने स्वयं को पहले एक मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट किया, एक भविष्यवक्ता, इस युग में कलीसियाई युग में होते हुए मनुष्य का पुत्र यानी परमेश्वर का पुत्र, और दूसरे युग में दाऊद का पुत्र, तीन पुत्र। परंतु आप यहाँ ध्यान दें, उसने कलीसियाई युग की समाप्ति की ओर कहा कि इसमें इतनी गड़बड़ी उत्पन्न होगी, जब तक कि वो स्वयं को फिर से मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट करेगा। जब मनुष्य का पुत्र प्रकट किया जा रहा होगा, वो कितना उपयुक्त था जो कल गड़बड़ हो गया। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें चूकते नहीं हैं। हमारे पास परमेश्वर के पुत्र का प्रकाशन था, परंतु अंतिम प्रतिज्ञा जो अब्राहम के पास थी, इससे पहले कि पुत्र बनाया गया था या प्रकट रूप में लाया जाता, वही जिसकी उसने प्रतिज्ञा की थी। इससे पहले कि प्रतिज्ञा का पुत्र दर्शाया गया, परमेश्वर ने स्वयं को वहाँ सादोम में एक भविष्यद्वक्ता के समान देह में एक मनुष्य होने के द्वारा प्रकट किया। परमेश्वर एलोहिम, थोड़ी देर पहले कोई बोल रहा था, मैंने सुना, जो कि परमेश्वरत्व देह में उसके अंदर था, वो परिपूर्णता था। एलोहिम परमेश्वरत्व की परिपूर्णता देह संबंधी। और हम वहाँ ध्यान देते हैं, जब लूत ने देखा, जब अब्राहम ने उसे आते हुए देखा, उसने कहा मेरे प्रभु, वहाँ वे तीन थे। और नीचे सदोम में लूत ने दो को देखा और कहा मेरे प्रभुओ, प्रकाशन की कमी। इसलिए अब ध्यान दें, वहाँ क्या हुआ, जब वो आया तो उसने अपने आप को कैसे प्रकट किया। क्या हम नहीं कर सकते, क्या मैं ये नहीं कह सकता यदि ये ठीक मेरी नाक के सामने हो रहा हो। देखिए, भाई ने भविष्यवाणी की, जब उसने मुझसे कहा, उसने क्या किया आज के दिन, ध्यान दें, पवित्र लेख के पढ़ने के पश्चात उसने क्या किया। मनुष्य के पुत्र के दिनों में एक मनुष्य नहीं, ना कि एक मनुष्य जाति, विशेष मनुष्य का पुत्र स्वयं को अपने लोगों के मध्य में फिर से प्रकट करेगा। आज के दिन ये प्रतिज्ञा इस घड़ी की, अब जिसमें हम जी रहे हैं, सबकी आंखों के सामने पूरी हो गई। वो तुरंत सभा की ओर घूमा और वहाँ 10 या 12 जितने भी लोग वहाँ पर थे अपरिचित, उसने वही चीज करी जो उसने सादोम में किया। आज के दिन क्या ये पवित्र लेख आपके सामने प्रकट हुआ, ये आपके सामने सत्य बना? तो फिर मेरे भाई बहन प्रतिनिधियों सेवकों, हम जो भी यहाँ पर हैं, परमेश्वर के बालक, तो हम उसके आगमन के कितने समीप हैं? यदि हम अब उस पवित्र लेख को देख रहे हैं, उससे थोड़ा पहले अब आग सादोम में गिरी और उसे भस्म कर दिया, और आज के दिन के समान, और ये पवित्र लेख को आंखों के सामने पूरा होते हुए देखते हैं, तो हम परमेश्वर के पुत्र के आगमन के कितने समीप हैं? पवित्र वचन का प्रकटीकरण कितना समीप है, जैसे कि उसने अब्राहम के द्वारा किया, कलीसिया को प्रतीक में से होते हुए ला रहा है, जो कि उसने कलीसिया से प्रतिज्ञा की है। और अब हम अब्राहम के शारीरिक वंश को पाते हैं कि वे कैसे असफल हो गए, परंतु अब्राहम का शाही वंश, जो प्रतिज्ञा किए हुए वचन पर विश्वास करने के द्वारा है, अब आज इस पृथ्वी पर प्रकट हो रहा है। हम अंत के समय में हैं, मेरे भाई बहन, हम अंत के समय में हैं, और हमारे पास दूसरा नमूना नहीं है। मेरे पास पवित्र वचन का नमूना है, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त शिक्षा नहीं कि शब्दों और बातों को लाऊं, मैं एक नमूना बनाता हूँ। परंतु यदि मैं प्रति छायाओं में देखता हूँ, यदि मैंने अपना हाथ कभी ना देखा होता और छाया देखता, तो मैं जानता कि मेरे पास 5 उंगलियां हैं। और इसी प्रकार से आपको पवित्र वचन के पुराने नियम में नमूनों का देखना है। ये क्या करता है? ये इसकी पहली छाया को दिखाता है। और यीशु ने कहा, सादोम अंत समय की पहले से आई हुई छाया है, और वही पवित्र वचन जिसकी सादोम से प्रतिज्ञा की गई थी, और वही लेख जो सादोम में घटित हो रहा था, जिसको कि यीशु ने कहा ये स्वयं को फिर से दोहराएगा इस दिन में, ये ठीक आज हमारे सामने जाना जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, इसमें चूके ना। यदि मैं आपको यहाँ अगले वर्ष ना देखूं, जब वे उन सुनहरी सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपसे वहाँ मिलूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।
We welcome you in the name of Jesus. Keep thy hands upon each one of us here, Lord. Protect all of us. Thou art coming soon. And may we be bold and witness as never before. He's coming. Hallelujah. Lord, pour out thy Spirit. Send the Holy Ghost and fire. Brand in our hearts, Lord. Impress upon us, Lord, this very thought of thy soon coming. It may be more. It may be night or day. We know thee. Would you lift your hands, everyone, lift both hands. Worship the Lord. Let him saturate you with his mighty power, with his Spirit, and reveal to you exactly where we are in your heart. Oh.
Father, we are
Pita. हम लोग वचन के अनुसार हम अपने अंतिम चिन्ह और नमूने को प्रकट होते हुए देखते हैं। यीशु मसीह के शब्दों ने ऐसा कहा है, जैसा कि ये सादोम में था, हम संसार की इस स्थिति को देखते हैं, हम कलीसिया को उस स्थिति में देखते हैं, हम चुनेवों को हर नामधारी कलीसिया में से बाहर बुलाए हुआ देखते हैं, जीवन जो उन स्थानों में है बाहर निकल कर बीज का रूप धारण कर रहा है। हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता कि हम एकदम जाग उठेंगे, जैसा कि अभी एक भाई ने कहा, उसने अपने सामने देखा और जब उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी उसके सामने से आम जनता जा रही थी। ओ परमेश्वर, हम अनुभव करते हैं कि अब भी भीड़ की भीड़ इसके संपर्क में नहीं है। प्रिय परमेश्वर, होने पाए कि हम इस बेदारी सभा से अपने हृदय में एक ऐसी चेतावनी के साथ जाएं, ये जानते हुए कि आज के दिन पवित्र लेख पूरा हुआ, यीशु के नाम में आमीन।
Our editor, Jerry Jensen, would you come up here? His mother-in-law is unconscious right now. He just got news. And they're ministers of the gospel, Four Square Ministries.
अभी मिला है, अभी सुना, अभी क्या वे यहाँ हैं? परमेश्वर के लिए दूरी कोई अर्थ नहीं रखती, वो सर्वव्यापी है। उसे परमेश्वर होने के लिए कुछ ऐसी महान बातें जो मैं जानता हूँ कि की गई हैं, मेरी नम्र सेवकाई में फोन के द्वारा की गई हैं, या कोई बुला रहा है, महान बातें घटित हुई हैं। आइए हम एक साथ इस बात में सहमत हों कि परमेश्वर इन लोगों को चंगा करेगा जो बीमार हैं। प्रिय स्वर्गीय पिता, हम इन्हें आपकी उपस्थिति में लाते हैं प्रार्थना के द्वारा। हम जानते हैं कि एक रात्रि एक चेला था जिसके अपने सारे कार्यक्रम बंद कर दिए गए थे, वो जेल में था और अगले दिन उसका सिर काटा जाना था। वहाँ यूहन्ना मरकुस के घर उनकी एक प्रार्थना सभा थी और ठीक वहाँ भीतर वाले कमरे में वहाँ वही अग्नि स्तंभ आया जो इज़राइल के बालकों के पीछे पीछे चला था, यानी इज़राइल के बालकों ने इसका अनुकरण किया था। उस सारे जंगल में से होते हुए सीधा भीतर भीतर आया उस प्रार्थना सभा के कारण, और सारे दरवाजे खुल गए और चेले को बाहर फिर से गली में ले आया, सेवक को उस सेवकाई के लिए स्वतंत्र कर दिया। हम समझते हैं कि ये सेवकगण मिशनरी लोग अब बंधन में हैं, वे यहाँ तक कि अवचेतन अवस्था में हैं। प्रभु, आप कल आज और सर्वदा एक से हैं, आज रात्रि हमारी प्रार्थना सुन ले ओ परमेश्वर। आपने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास कर लो कि जो तुमने मांगा पा लिया है तो तुम्हें दे दिया जाएगा। प्रभु, हम यीशु के नाम में विश्वास और प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें चंगा करेंगे प्रभु अपनी महिमा के लिए। ये कहा गया और मांगा गया है, अब इसे होने दें, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे टेड, आप उसके साथ विश्वास करें। भाई देमास,
I just quickly like to Have the men stand up. Brother Argenbright and the International Brothers. Stand up, Brother Miner. Jack Moore. Stand up. Clifford Ford. Thorfinn from Seattle. Charles Colonel Young. Andy Christopherson. Turlock. Jasper Emler. I can name you. From Hawaii and Islands. My, how he blessed our souls through the other man. Love you. Our U.S. Ambassador, who served under seven presidents, Bill Rowe, William Rowe, God bless Rowe. Dr. Raymond, our directors, too, God bless Raymond. Earl Brickett. And Brother Branham was given an honorary membership, life membership, for the United States. One of the few that was voted on by the Board of Directors many years ago. And Carl Williams, we love him so much. And Brother Henry Krause, the plow manufacturer. Jewel Rowe, our Secretary of Treasury. Farmer, Frank Boyle, International Tractor, and Brother Derek Prince, how we appreciate his ministry. My, and so wonderful, and so much. Dr. Stanley from the Catholic, Eastern Catholic, Brother Howard Irvin, so you're back there. Howard Irvin, and we just had your, was it Anna? We just had her stand up a moment ago, Howard, while you were with the young people. And I'd like to see that picture, Brother Branham's, 20 years ago. Brother Norwood from Kansas City. Brother Vince Smart from Colorado. Herbert Bonham from Los Angeles. He's one of the directors of Los Angeles chapter, doing the great work there. And Ted Weiss from Pasadena, sitting over there. Corner, did I? Art Wilson here. We didn't have place enough here for him, so he sat with all the ladies. And all the ladies here are directors' wives and all the wonderful people. Did I miss anyone else? Some of the other directors had to go home yesterday. Darrell Hahn and several others had to leave. So let's see these men. We appreciate all their efforts. And Brother Brandon, come here, Brother Brandon. You recognize that song?
No, sir. नहीं, नहीं, श्रीमान. उन दिनों से भी भाई बहुत बदलाव है, भाई.
He is a very handsome fellow, and he's still handsome, Brother Brandon. And that's a nice picture. Yes. And we had your aunt to stand a moment ago, too. And maybe you'd like to say a word, Howard?
Between 12 and 15 years ago, Aunt Edith was healed of Raynaud's disease, which I understand is medically incurable. I don't know whether Brother Branham told you the circumstances, and I wonder if I might take just one moment to do so. This is her card that she got for the healing line. She never got in the healing line. She was seated in the second row in the auditorium here in Phoenix. Brother Branham had preached his heart out, was just too exhausted to pray for people, but suddenly looked down at her, looked directly at her, and said, "You can be healed if you want to be." And she went out of that meeting healed and is still healed. Yes, I understand that the disease was incurable, and our physicians here will check me. I'm a layman at medicine, but I understand that it's a disease of the nerves that affects one similar to leprosy. The nerves choke off the blood supply, and eventually the fingers just rot and fall off. There was one medical operation that the surgeon in the East told them they could perform, and that was to cut a nerve up in here, but if they had, she'd have been a vegetable. But God, by his mighty power, has healed her, and she's healed today.
Let's just have her stand up again back there.
Would you stand up, Eddie?
There it is. 20 years later.
About
15
years
later. 15 years later. Thank
you. वे पुरुष चले गए. हम सब भाई शिकरियन की सराहना करते हैं. क्या नहीं करते हम में से प्रत्येक.
Father,
We can visualize tonight of you standing by the side of the wall once and watching the people come by and put into the treasury of God. And you've seen this widow come by with just a small amount of money and just a few pennies of tithings, and perhaps had some children at home, but she was interested in the kingdom. There's no doubt that that has been recopied again tonight. There's been many people that's put in practically all they've got right here in this offering, because it has been so placed before us that there is a need and our hearts are in this, Father. I've often thought perhaps if I'd have been standing there, it'd been me looking at that widow, I'd have run to her and said, "Don't do it, sister. We don't need it." But maybe it would have been wrong. You never told her not to do it. You just stood and watched her do it. Yeah. Or you know from her heart, you'd repay her for that. Father, I know that you know the intents of every heart that placed in here tonight. And what it's for, it's for the kingdom's sake, Lord, that this work that we're so wonderfully enjoying, this fellowship, Lord, of all of the great denominations of the world, we have feel that we're such a privileged people to be here tonight in the presence of God, feeling this great word coming forth and making manifest, proving God being in our midst. God, give to each and every one here as they have need. We pray now that you'll bless the offering for its intended use. We ask this in Jesus' name. Amen. God bless you.